तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तेरे ही गुणगान, एक तेरे ही गुणगान,
एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। तेरी याद की शीतल छैया में, तेरी याद की शीतल छैया में, सब सुख तुमसे
शांति। 21 जून के साकार मुरली में बाबा ने प्रश्न उत्तर के बाद एक दूसरा प्रश्न पूछा था कि आप रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उस समय सभी क्या कर रहे थे? एक बाप की अव्यभिचारी याद में बैठे थे। तो बाबा ने कहा कि एक बाप की अव्यभिचारी याद में बैठे हुए हैं। बाबा ने आगे कहा कि एक है अव्यभिचारी याद और दूसरी है व्यभिचारी याद। तो अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब द्वापर में शुरू हुई तो एक शिव की ही भक्ति करते थे, एक शिव को ही सब कुछ मानते थे, लेकिन बाद में भक्ति फिर व्यभिचारी बन गई। तो बाबा ने कहा कि उसमें एक शिव की भक्ति करते थे क्योंकि शिव ही सत्य भगवान है, ऊंच ऊंच भगवान है। और बाबा ने कहा कि ऊंच ऊंच भगवान जो शिव है वही बाप है और वही शिक्षक है। तो इसके अलावा बाबा ने और भी कई मुरलियों में इस बात को रेफर किया है। जैसे कि एक मुरली में बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है, इसी से आपके बेकर्म विनाश होते हैं। एक दूसरी मुरली में बाबा ने कहा कि अव्यभिचारी याद, एक बाप की याद अर्थात अव्यभिचारी भक्ति या अव्यभिचारी याद, क्योंकि आप एक बाप को याद करते हो उसको ही अव्यभिचारी याद कहते हैं या फिर भक्ति भी कहते हैं। तो बाबा ने अलग अलग समय पर अलग अलग मुरलियों में अव्यभिचारी याद के बारे में चर्चा की है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अव्यभिचारी याद क्या है और व्यभिचारी याद क्या है। अव्यभिचारी याद इस ब्राह्मण जीवन में क्यों आवश्यक है और उसको हम कैसे जीवन में बढ़ाएं, उसको जीवन में कैसे हम अप्लाई करें। तो हम सभी जानते हैं कि बचपन से लेकर के हम सभी को अनेकों की याद दिलाई जाती है, सिखाते हैं। तो जब बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत हम अनेकों को याद करते हैं, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसको माँ क्या करती है, दूसरों का परिचय देती है कि ये आपके भाई हैं, ये बहन है, ये अंकल हैं, ये आंटी हैं, मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, तो अनेकों की याद दिलाती है। जो बच्चे की बुद्धि में वो सारी बातें फिट हो जाती हैं कि ये हमारे चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, नाना हैं, काका हैं, जो भी रिलेशंस होते हैं। और बच्चा थोड़ा बात बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, तो उसमें क्या करता है, टीचर को याद करता है। टीचर भी अनेक होते हैं, उसके वहाँ फ्रेंड्स भी होते हैं तो उनको याद करता है। और जब उसकी लाइफ और भी आगे बढ़ती है, जब शादी करता है तो क्या होता है, पति पत्नी एक दूसरे को याद करते हैं। उसके बाद जब लाइफ और आगे बढ़ती तो क्या होता है, जीवन जब अनेक समस्याएं आती हैं, क्योंकि गृहस्थी जीवन में अनेक प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस समय फिर व्यक्ति क्या करता है, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं सत्संग करता है, कोई ना कोई साधु संत महात्मा उनके शरण में जाता है, उनको याद करता है, और उनके द्वारा बताए गए कई प्रकार के मार्ग उनको वो फॉलो करता है। साथ साथ जो अनेक प्रकार के देवी देवताएं हैं उनको याद करता है। और हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज में, भारतीय सिस्टम में या समाज में सिस्टम बना हुआ है कि सारा ही साल, सारा ही वर्ष कोई ना कोई को याद करते ही रहते हैं, कभी हनुमान जी को तो कभी गणेश जी को। महावीर जयंती आएगी तो हनुमान जी को याद करेंगे, और गणेश चतुर्थी आएगी तो गणेश जी को याद करेंगे, रामनवमी आएगी तो राम को याद करेंगे। तो सारा ही वर्ष किसी न किसी को याद करते ही रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ करते करते हम पहुंचे कहाँ हैं, वर्तमान समय या ज्ञान में आने से पहले हम कहाँ पहुंचे थे, बिल्कुल तमो प्रधान स्थिति में। क्योंकि अनेकों को हम याद करते रहे, और अनेक वो जो सब देहधारी थे, चाहे संबंधी हैं, चाहे कोई देवी देवताएं हैं, चाहे कोई संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, कोई गुरु गोसाई हैं, वो सब कौन थे, देहधारी थे। तो बाबा वर्तमान समय हम सभी को कहते हैं कि अनेक जो देहधारी थे, उन जिनको आपने याद किया, उनकी उनको याद करने से जो रिजल्ट मिली आपको, वो क्या मिली, सब कुछ आपने गंवा दिया। तो जैसे एक भक्त की कहानी है कि वो एक भक्त अपने गांव से कहीं जा रहा था, तो उसके गांव से गांव के बाहर एक नदी बह रही थी, तो उस नदी से पार जब कर रहा था, और नदी पार करते करते जब उसको एहसास हुआ कि पानी बहुत तेज है और हम इसको पार नहीं कर पाएंगे, जब उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, तो उसने अपने इष्ट देव हनुमान जी को याद किया कि हे हनुमान, आप तो संकट मोचन हैं और हमारे सामने अभी ये समस्या है, आकर के हमारी रक्षा करो, हमको इससे बाहर निकालो। तो जब उसने हनुमान जी को याद किया तो उसकी याद हनुमान जी तक पहुंची, और हनुमान जी उसकी हेल्प के लिए निकल पड़े। लेकिन देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो गणेश जी को याद करता है कि हे गणेश जी, आप तो विघ्न विनाशक हैं, तो आकर के हमारी मदद करो, मैं इस समस्या में, इस परिस्थिति में उलझा हुआ हूँ। तो गणेश जी आते हैं। तो इस प्रकार से वो अलग अलग इष्ट देवों को याद करता है, कभी राम जी को तो कभी श्री कृष्ण जी को, और अंत में होता क्या है कि उसके पास तक कोई भी सहारा नहीं पहुँचता है, कोई भी इष्ट देव उसके पास तक नहीं पहुँचते, क्योंकि उसकी याद व्यभिचारी याद थी, अनेकों में उसकी याद थी, और कोई भी समय पर नहीं पहुंचा और वो डूब गया। तो इस संसार में भी सभी के जीवन में ऐसा ही हुआ है कि अनेकों को याद करते करते हम वर्तमान समय अपनी जो हमारी लास्ट गिरावट की स्टेज है वहां तक पहुंचे हैं, जहां हमने सब कुछ गंवा दिया। तन मन धन जन, जो मानव जीवन के चार इंपॉर्टेंट्स, जो चार विशेष उपलब्धियां हैं, चार आवश्यकताएं हैं, वो हमने पूरी तरह से खत्म कर दिए। बाबा कहते हैं भक्ति करते करते आपने सब कुछ गंवा दिया। तन, तन कैसा बन गया है, रोगी। मन कमजोर, शक्तिहीन। और धन काला, धन काला। और संबंध बंधन वाले, दुखदायी। तो बाबा ने कहा कि सब कुछ आपने गंवा दिया, इसलिए अभी आपको अव्यभिचारी एक मेरी अव्यभिचारी याद में रहना है। तो सबसे पहली बात है कि जो व्यभिचारी याद है उस याद से हमें क्या क्या नुकसान हुआ है उसको हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अव्यभिचारी व्यभिचारी याद से नुकसान हुआ उसको नहीं जानेंगे तब तक हम उससे अपने आप को नहीं छुड़ा सकेंगे। तो व्यभिचारी याद से क्या क्या हमको नुकसान हुआ है, हम अनेकों को याद करते रहे उससे क्या हुआ है? थकान, सबसे पहली बात है थकान, क्योंकि उसमें मन बहुत भागता है, कभी यहां तो कभी वहां, कभी कहीं तो कभी कहीं, तो उससे मन को मन थक चुका है। साथ साथ धोखा मिला, क्योंकि समय पर कोई नहीं आया, क्योंकि आज इसको याद किया तो कल किसी और को याद किया, तो और को याद करने से समय पर फिर सहयोग नहीं मिलता है। तो दूसरी बात है कि उनसे हमको धोखा मिला है और शक्तिहीन बन गए, क्योंकि मन जो है वो हमेशा भागदौड़ करता रहा, उछल कूद करता रहा, कभी कहीं तो कभी कहीं, इससे मन शक्तिहीन कमजोर बन गया है। और क्या हुआ? धन खर्च हुआ, क्योंकि अनेकों को खुश करने के लिए हमने धन को यूज किया और वो खुश तो नहीं हुए, लेकिन हमारे पास जो धन था वो खत्म हो गया। निश्चय भी बार टूटा, क्योंकि जिसको हमने याद किया वो समय पर हाजिर नहीं हुआ, तो हमारा निश्चय भी उससे टूट गया। और मन भटकता रहा और भगवान से दूर हो गए, विशेष बात है कि हम भगवान से दूर हो गए। जो भगवान, जो सत्य है, जो हमारा सब कुछ है, जिससे हमें सब कुछ मिला था और सब कुछ मिलने वाला है, जो हमारा सर्व संबंधी है, उससे हम बहुत दूर चले गए। और क्या हुआ? अनेकों में हम उलझ गए, अनेकों को खुश करते रहे और कोई भी प्राप्ति नहीं हुई है, सब कुछ करके भी हम अपने आप को खाली अनुभव करते रहे, उदास हो गए, निराश हो गए, दिल से कष्ट, हताश। तो व्यभिचारी याद से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बहुत सारा हमको नुकसान उठाना पड़ा। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए आपको अभी एक मेरी अव्यभिचारी याद में रहना है। वैसे हम इस ब्राह्मण जीवन में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम किसी और को अपना सपोर्ट मानते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में भी हम कहीं ना कहीं व्यभिचारी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? हम दूसरों को अपना सहारा बना लेते हैं, लेकिन संसार में कोई भी किसी का सहारा नहीं बन सकता है। सहयोगी बन सकता है पुरुषार्थ के लिए, सेवाओं के लिए एक दो के सहयोगी बन सकते हैं, सहयोगी बनना है, लेकिन किसी को भी अपना सहारा नहीं बनाना है। सहारा एक भगवान, बाकी सब हम सर एक सहयोगी हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में भी आपको कोई को भी आधार नहीं बनाना है, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसका यदि पार्ट पूरा हुआ तो वो आधार हमारे पास से निकल जाएगा, फिर हम जहां थे वहीं अपने आप को खड़ा पाएंगे। तो पहली बात है कि हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे जो व्यभिचारी याद थी जिससे हमारा नुकसान हुआ है। दूसरी बात है कि हमें अपनी अव्यभिचारी याद को बढ़ाना है। तो अव्यभिचारी याद को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको हमें जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, जो बाबा ने हमें सिखाए हुए हैं। तो सबसे पहले है कि एक का पाठ, बाबा ने आप हम सभी को एक का पाठ सिखाया हुआ है, और उस एक के पाठ में कौन कौन सी बातें बताई हुई हैं? एक बाप, एक शिक्षक, एक सतगुरु, एक गुरु, क्योंकि दुनिया में तो अनेक होते हैं, बेशक बाप तो एक ही होता है, लेकिन बाकी जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, वो तो अनेक होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपका तो एक ही बाप है और वही बाप आपका शिक्षक है। तो एक बाप, एक शिक्षक, एक सतगुरु और एक धर्म, एक मत, एक पढ़ाई, एक घर, घर भी हमारा एक है, एक ही रास्ता, एक से सर्व रिश्ते, एक ही लक्ष्य, लक्ष्य भी हम सबका एक ही है, हमारा लक्ष्य भी केवल एक ही है। और एक ही लक्षण, हमारे लक्षण भी सबके एक ही हैं, और एक इरादा एक वादा। कौन सा इरादा? संपूर्ण बनने का, बाप समान बनने का इरादा और एक ही वायदा। और तो सबसे पहले बात है कि हमें एक का पाठ पक्का करना पड़ेगा। दूसरी बात है, बाबा ने कहा कि अव्यभिचारी याद के लिए प्यार, अपने प्यार को बढ़ाओ। किस किस से प्यार को बढ़ाना है? सबसे पहला तो भगवान, भगवान जो प्यार का सागर है, जो सारे संसार को प्यार लौटाता है, तो हमें उसके प्रति अपना प्यार बढ़ाना है। बाबा हमारे को प्यार दे या ना दे, हमें क्या करना है? हमें अपना प्यार उसके प्रति बढ़ाना है। हाँ? क्योंकि हमें उससे लाभ लेना है ना, भगवान को हमारे से लाभ नहीं लेना है, लेकिन हमें उससे फायदा लेना है। इसलिए हमें अपना प्यार उसके प्रति बढ़ाना है अपने फायदे के लिए। तो पहली बात है कि भगवान से हमारा प्यार बढ़ता रहे। तो भगवान से प्यार कैसे बढ़ेगा? दुनिया में किसी से प्यार कैसे बढ़ता है? बाबा ने कईयों को याद किया ना भक्ति मार्ग में, जैसे लाला मजनू है, हीर रांझा है। तो यहां भगवान से प्यार कैसे बढ़ेगा? भगवान को याद करने से, भगवान से बातें करने से, भगवान की याद में खोए रहने से, उनका कहना मानने से, उसके लिए पत्र लिखने से। तो भगवान से हमें अपना प्यार बढ़ाना है। दूसरी बात है भगवान के मुरली से प्यार। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा आपसे प्यार तो है, लेकिन आपके मुरली सुनने का हमको समय नहीं मिलता है। तो बाबा ने उनके लिए कहा कि बाप नहीं मानते हैं। जो ऐसा कहते हैं उनकी, उनको बाप नहीं कहते, बाप नहीं मानते कि उनका हमारे से प्यार है। बाप से प्यार अर्थात बाप के मुरली से प्यार, मुरली से प्यार है तो बाबा मानते हैं कि हाँ हमारे से प्यार है। तो बाबा ने कहा कि अव्यभिचारी याद के लिए, जो भगवान के मुरली, भगवान के मां बाप हैं, जिनसे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है, जो हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है, जिससे ही ब्राह्मण जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो हमारा मुरली से बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। तो मुरली से प्यार अर्थात उसके मां बापों में निश्चय, और नहीं मुरली से प्यार, मुरली से प्यार माना मुरली को पढ़ना, तो मुरली से प्यार अर्थात मुरली को पढ़ना, मुरली से नोट्स निकालना, उस पर मनन चिंतन करना, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, उसको यूज करना। और मुरली से प्यार अर्थात क्या? मुरली का स्वरूप बनना और दूसरों को भी भगवान के महाभाग सुनाना, दूसरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाना, तो ये भी मुरली से प्यार की निशानी है। तो दूसरी बात है कि मुरली से प्यार, और तीसरी बात है ब्राह्मण परिवार से प्यार। बाबा ने आप हम सभी को इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार दिया है, उस ब्राह्मण परिवार में हर एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है, सब भविष्य में देवता बनने वाले हैं, सब देवियां बनने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण परिवार से भी आपका अटूट स्नेह होना चाहिए, रूहानी प्यार होना चाहिए, शुद्ध स्नेह। क्योंकि ब्राह्मण संसार में जो भी आत्माएं आई हैं, वो अभी ब्राह्मण परिवार में आने से पहले लौकिक दुनिया में थी, कलयुग दुनिया में थी। तो वो आत्मा जब ब्राह्मण परिवार में संसार में आई हुई हैं, तो उस दुनिया से वो कई अपने पुराने संस्कारों को भी लेकर के आई हैं, और वो संस्कार उनके जीवन में वर्तमान समय में देखने में आते हैं। जब संस्कार वो देखने में आते हैं और हमारे साथ वो इंटरेक्ट होते हैं, तो क्या होता है? तो कई फिर प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों गलती की है, बाबा तो ये कहता नहीं है। तो ब्राह्मण आत्माओं से स्नेह अर्थात उनकी जो कमी कमजोरियां, उनको न देखते उनकी विशेषताओं को देखना, उनकी विशेषताओं को, उनका वर्णन करना, उनको कार्य में लगाना, तो यह है ब्राह्मण परिवार से स्नेह। और अगला है भगवान के यज्ञ से स्नेह, भगवान के यज्ञ से प्यार। भगवान इस संसार में आए हैं सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए, और उसका आधार उन्होंने क्या बनाया हुआ है, ये बेहद का यज्ञ। भगवान ने जो बेहद का यज्ञ रचा हुआ है, इस यज्ञ के प्रति भी हमारा अथाह प्यार हो, अथाह स्नेह हो, क्योंकि इस यज्ञ से ही सारे संसार का कल्याण हो रहा है और होने वाला भी है। तो इस यज्ञ में जो भी नियम मर्यादाएं हैं, कानून है, सिस्टम है, उनको हमें फॉलो करना है, उनको हमें कभी भी तोड़ना नहीं है, उनके प्रति हमारी भावनाएं बिगड़े नहीं। कैसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बेहद का परिवार है, वैरायटी आत्माएं हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही है। जहाँ 10 व्यक्ति होते हैं वहाँ 11 मतें होती हैं, क्योंकि हर एक अपने अपने किसी अर्थशास्त्री ने कहा कि जहाँ 10 लोग होते हैं वहाँ 11 मतें होती हैं, क्योंकि हर एक की अलग अलग एक मत होती है, और सबकी मत को मिलाएंगे तो 11 ही बन जाएगी। तो इसलिए नहीं, संसार जो आत्माओं की मतें होती है उसमें, क्योंकि संगठन में ऐसा होता है, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी, हर एक की समझ अपनी अपनी होती है। तो इस यज्ञ के प्रति भी हमारा प्यार कभी भी कम ना हो, अटूट प्यार रहे। तो यदि हमारा यज्ञ से अटूट प्यार रहेगा तो हमारी जो याद है वो अव्यभिचारी बनी रहेगी, वो बार बार टूटेगी नहीं, बार बार खंडित नहीं होगी, क्योंकि बार बार याद टूटती है, खंडित होती है, उसका यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में किसी न किसी प्रति हमारी भावनाएं बिगड़ जाती हैं, किसी कमजोरी देखकर, किसी कोई नेगेटिव बात को देखकर के। तो बाबा ने कहा कि आपका सभी के प्रति स्नेह की भावना हो, तो भगवान से प्यार आपका हो, भगवान की मुरली से प्यार हो, ब्राह्मण परिवार से प्यार हो, और चौथी बात भगवान के यज्ञ से प्यार हो। अगली पॉइंट है भगवान के मत, ईश्वरीय मत, श्रीमत। बाबा ने कहा कि जहां श्रीमत है वहां स्वयं मैं हूं, क्योंकि भगवान ने हमें जो मत दी है, वो मत भगवान ने दी है कि संसार में आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि बाबा को इस संसार के बारे में मालूम है कि इस संसार में आपको कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे आपको व्यवहार में आना है, कैसे आपको कार्य करना है। तो बाबा ने हमें हर कार्य के लिए श्रीमत दी हुई है, संबंध संपर्क में आने के लिए, दूसरों के व्यवहार में आने के लिए, हर कार्य के लिए बाबा ने श्रीमत दी हुई है। तो बाबा ने कहा कि यदि आप मेरी श्रीमत को फॉलो करते हैं, श्रीमत के कदम पर कदम रख के आप चलते हैं, तो मैं जिम्मेवार हूं। यदि आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव होता है, कुछ नुकसान भी होता है, तो उसको भरपाई करने के लिए मैं बंधा हुआ हूं। तो बाबा ने कहा कि श्रीमत को फॉलो करते रहो, यदि हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो इससे हमारी याद अब व्यभिचारी बनी रहेगी। यदि जीवन में कहीं कुछ नुकसान होता भी है तो उस समय बाबा हमारे में वो बल भर देगा जो हमारी बुद्धि व्यर्थ संकल्पों के रूप में नहीं चलेगी। अगली बात है ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना। बाबा ने कहा कि संसार में बहुत सारी बातें जीवन में होती हैं, उतार चढ़ाव आता है, कई समस्याएं, कई घटनाएं घटती हैं, लेकिन आप बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है। तो बाबा ने जो ड्रामा की हमें विशेषताएं बताई हैं, उन विशेषताओं को हमें बार बार रिवाइज करना है, उनको हमें बार बार याद करना है, और समय पर उनको यूज करना है। यदि हम वो बातें बार बार याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हमारी बुद्धि में वो याद रहेंगी, और समय पर कोई भी घटना घटेगी तो हमको वो याद आएगी और हम उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो जब हम ड्रामा की बातों को बार बार याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, उनका अनुभव करेंगे और समय पर यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी याद अव्यभिचारी रहेगी, बाबा की याद सदा बनी रहेगी। नहीं तो ड्रामा में कई ऐसे दृश्य, कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको देख करके बुद्धि हिल जाती है, हर एक का मन हलचल में आ जाता है। चाहे बीमारी के रूप में कई घटनाएं घटती हैं, कोई संबंधों में कुछ टकराव होता है, मनमुटाव होता है, कहीं धोखा होता है, या कहीं ना कहीं कोई प्राकृतिक घटना घटती है, तो उस समय सभी का मन विचलित हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो। तो ड्रामा के बारे में बाबा ने कौन कौन सी बातें बताई हुई है? नथिंग न्यू, जो हो रहा है वो कल्प पहले भी हुआ था और अगले कल्प में भी होगा, इसलिए आपको अभी हलचल में नहीं आना है, जो हुआ उसको फुल स्टॉप। और ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में किसी आत्मा का कोई कल्याण नहीं है। यदि कल्याण, यदि अकल्याण दिखाई दे रहा है तो वो कोई ना कोई हमारे पास्ट कर्मों का हिसाब किताब था, इसलिए कोई भी बात हमारे साथ में घटे, चाहे बीमारी है या कुछ भी है, लेकिन वो समस्या हल होने के बाद आगे हमारा कल्याण है, इसलिए ड्रामा कल्याणकारी, उसको हमें याद रखना है कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, उसके रिजल्ट है। और ड्रामा में निर्दोष कैसे? निर्दोष नहीं है, हर एक आत्मा का कोई ना कोई हिसाब किताब तो है, कर्मों का खाता। और ड्रामा भगवान को बहुत पसंद है, तो आपको भी पसंद होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा इतना सुंदर बना हुआ है। ड्रामा बहुत वैरायटी है, ये रमणीक है, इसमें हमेशा कोई ना कोई नवीनता रहती है। एक इसमें ड्रामा कभी भी एक जैसा नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील है। ड्रामा सबको हल्का कर देता है ना, ड्रामा की बात हमको हल्का कर देती है। यदि ड्रामा ज्ञान ना हो तो हम भारी रहें, कोई बात को लेकर के हम हमेशा भारी रहेंगे, लेकिन जैसे ड्रामा याद आता तो हम उस बात से हल्के हल्के हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। और हाँ, ड्रामा के बारे में यदि हम क्वेश्चन उठाते हैं कि ड्रामा में ऐसा क्यों, इसका मतलब है कि परमात्मा के प्रति हमारा निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, हम उसके प्रति हमारा विश्वास डोलायमान है। तो ड्रामा में क्यों, क्या, ये क्वेश्चन हम नहीं उठा सकते हैं, और किसी के प्रति घृणा भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, फिक्स है। तो उसने, हमने पहले कभी रखा होगा उसके प्रति घृणा भाव, उसको माफ करना है, अपने सवाल में रहकर उसको माफ करना है। तो एक ये ड्रामा की पॉइंट है कि यदि हम ड्रामा को याद रखते, ड्रामा के पट्टे पर हम चल रहे हैं, तो हमारी याद, अव्यभिचार याद सदा कायम रहेगी। इसके अलावा है, अगली पॉइंट है कि एक बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव, क्योंकि आत्मा को इस संसार में अनेकों से रस लेने का अनुभव है, अनेक संबंधों से रस लेने का अनुभव है, तो इसलिए बुद्धि यहां वहां भटकती है, कभी किसी में तो कभी किसी में। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको एक मेरी अव्यभिचारी याद में रहना है, तो अभी वो सारे संबंधों का अनुभव एक मेरे साथ करनी है, जिस संबंध की आपको जरूरत है, जिस संबंध के अनुभव की आपको इच्छा है, वो संबंध आप अभी मेरे साथ जोड़ो और उस संबंध का रस, उसका अनुभव करो, तो उससे आपकी बुद्धि भटकना बंद हो जाएगी और आपका मन मेरे से हमेशा जुटा रहेगा। तो एक ये विधि है कि एक परमात्मा के साथ अपने हम सर्व संबंध जोड़े रखें और उसी से सारे संबंधों का लाभ लें, रस लें। इसके अलावा और कौन सी बातें ऐसी होंगी जो हमारी अव्यभिचार याद के लिए, कौन कौन सी बातें ऐसी होंगी? नहीं, वो तो होता है, लेकिन और कौन सी ऐसी विधि है जो हम, जिससे हमारी याद अव्यभिचारी रहे? वैराग, इस संसार से वैराग, इस संसार से अगर राग है तो हमारा भगवान के साथ राग नहीं जुटेगा, तो इस संसार से हमारा वैराग हो। कैसा वैराग हो? बेहद का, अल्पकालीन नहीं, टेम्परेरी नहीं, शमशानी वैराग नहीं कि कोई कुछ कारण हुआ तो हमारा वैराग उत्पन्न हुआ और वो बात हल हुई तो हमारा फिर से राग जुट गया, किसी से कुछ अनबन हुई टकराव हुआ तो हमें उससे बैरा गया, और बाद में कुछ समय के दो दिन के बाद संबंध अच्छे हुए तो फिर हमारा राग उससे जुट गया। तो हमारा बैराग बेहद का हो, सदा काल का हो। और बेहद का बैराग कैसे आएगा? समझ से, ज्ञान से, नॉलेज से कि वर्तमान समय क्या चल रहा है, हमें उस समय की स्मृति रहे कि दुनिया अभी बदलने वाली है, जाने वाले है, सभी आत्माएं वापस घर चलने वाले हैं, इसलिए हमें यहां किसी से भी अपना लगाव नहीं रखना है, किसी से लागत नहीं रखनी है, सभी के साथ संबंध तो रखनी है लेकिन किसी से लगाव नहीं रखना है, राग एक भगवान से रखना है। तो वेद का वैराग होगा और भगवान से लगाव होगा तो हमारी जो याद है वो अव्यभिचारी रहेगी। अगली पॉइंट है कि स्थूल और सूक्ष्म एकांत, स्थूल भी एकांत हो तो सूक्ष्म भी एकांत हो। तो स्थूल एकांत के लिए बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई सात दिन में कोई ना कोई समय निकल करके आप एकांत में जाओ, वहां अपने आप से बातें करो, बाप से बातें करो, और जो ज्ञान की रोज की मुरली में जो ज्ञान के पॉइंट्स मिलते हैं उन पर चिंतन करो, उस पर अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। साथ साथ हमारा सूक्ष्म एकांत भी होना चाहिए। वो कैसे होगा कि एक बाप के अंत में खोए रहो, बीच बीच में एक बाप के पास चले जाओ, उससे बातें करो, उससे रूढ़ ज्ञान करो, स्वयं की कोई समस्याएं हैं, कोई कारण हैं, कोई बातें हैं, कोई परिस्थितियां हैं, उनके बारे में उसे चिटचिट करो, उसका हल उससे लो कि बाबा अभी हम इसके लिए क्या करें, ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसा ऐसा कारण है, अभी इसके लिए हमारे को आपकी क्या राय है। तो स्थूल के साथ साथ हमारा सूक्ष्म एकांत भी होना चाहिए, इससे भी हमारा जो अव्यभिचारी याद है वो बढ़ती है। और इसके अलावा और क्या क्या होंगे? प्यूरिटी, प्यूरिटी से क्या होगा? अव्यभिचारी होगी, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां पर बुद्धि शक्तिशाली है, बुद्धि एकाग्र है, बुद्धि का कहीं भी भटकाव नहीं है, किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। और ये आकर्षण इस ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। बाबा ने कहा कि अनेकों के नाम रूप में फंस जाते हैं। अनेकों के नाम रूप में फंसते क्यों हैं? क्योंकि प्यूरिटी का बल नहीं है, कम है, तो दूसरी आत्माएं आकर्षित करती हैं, किसी के देह, किसी की विशेषता, किसी के कोई गुण है, कोई कला है, वो आत्मा को खींचती है। यदि स्वयं में प्यूरिटी का बल होगा तो वो कोई भी बातें आपको आकर्षित नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप में नहीं फंसेंगे। तो जहां प्यूरिटी का बल है वहां पर अव्यभिचारी याद रहेगी। आत्मअपमान स्थिति और आत्मिक दृष्टि, इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम सभी को जो पहला पाठ पढ़ाया वो पाठ क्या है कि अपने को आत्मा निश्चय करो और उस अपने आत्मिक स्वरूप में रहो, टिको, उसका अभ्यास करो, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, वो देखने में तो नहीं आती है, लेकिन उसका अभ्यास करेंगे तो आपको वो महसूस होगा, उसकी वो रियलाइज होगी। तो आत्मिक जो अभ्यास है हमारे इस पुरुषार्थी जीवन में बहुत आवश्यक है, और आत्मिक अभ्यास के लिए आवश्यक है कि हम कोई ना कोई सम्मान के माध्यम से, जो हमारे स्वयं के जो मौलिक गुण हैं आत्मा के, उनके माध्यम से यदि हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे जो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास है वो पक्का होता है, वो सहज रहता है। यदि हम ऐसे ही अभ्यास करेंगे बिना कोई गुण, बिना कोई शक्ति के, तो वो अनुभव में नहीं आता है और फिर वो लंबे समय तक टिकता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई गुण को समान के रूप में लेकर के, कोई ना कोई शक्ति को समान के रूप में लेकर के उसको अभ्यास में लाएंगे तो लंबे समय तक उसका अनुभव टिकेगा। और साथ साथ अन्य आत्माओं के प्रति आत्मिक दृष्टि, कि इन शरीरों में जो भी बैठे हुए हैं, जो देखने वाले हैं, बोलने वाले, सुनने वाले, जो एक्टिविटी करने वाले हैं, वो सभी आत्माएं हैं, वो ना मेल है ना फीमेल है, वो सब चैतन्य शक्ति आत्माएं। तो जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का होगा तो इससे हमारे जो याद है वो अव्यभिचारी रहेगी। तो ये कुछ बातें थी जो हमारी अव्यभिचारी, समय की पुकार, समय की पुकार, बाबा ने कहा कि अभी ये अंतिम समय आकर खड़ा हुआ है, तो यदि हमें ये याद रहेगा कि अभी ये अंतिम समय है, बस अभी घर जाने का समय है, थोड़ा समय बाकी है, यदि समय की याद हमें रहेगी तब भी हमारी याद अव्यभिचारी रहेगी, क्योंकि हमें वापस चलना है। और हमें किसके साथ वापस चलना है वो भी याद रहेगा, कहाँ चलना है वो घर भी याद रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमारी अव्यभिचारी याद को बढ़ाने में मदद करते हैं, मदद करेंगी। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, अव्यभिचारी याद से फायदे क्या है, क्योंकि हम कोई भी कार्य तब करते हैं जब हमें उससे कुछ फायदा होता है, बिना फायदे के कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं करता है। तो यदि हमें अव्यभिचारी याद के जो फायदे हैं वो फायदे हमें याद रहेंगे तो हम अव्यभिचारी याद में रहने का प्रोत्साहित भी करेंगे। तो अव्यभिचारी याद में रहने से क्या क्या फायदे होंगे, क्या बढ़ जाएगी, आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी, आत्मा में बल बढ़ेगा क्योंकि एक की याद है, व्यर्थ से मुक्ति मिल जाएगी। यदि हमारी याद अव्यभिचारी है तो हमें तो हम व्यर्थ से सदा मुक्त रहेंगे, हमारी खुशी बढ़ेगी, खुशी का पारा बढ़ेगा, आधा कल्प के लिए कमाई होगी, पुण्य की कमाई होगी, और पास्ट आधा कल्प का हिसाब किताब तेजी से चुकते होगा यदि हम अव्यभिचारी याद में रहते हैं तो। और हल्कापन रहेगा, हम लाइट रहेंगे, सदा उठते रहेंगे, समय से पहले हम रेडी हो जाएंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे। और हाजी हाँ, कर्म सुकर्म बन जाते हैं, और क्या होगा, भगवान से समीपता बढ़ेगी क्योंकि हम उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते रहेंगे, उसके अंग संग रहेंगे, उससे हमारी वार्तालाप होती रहेगी, तो उससे हमारी समीपता बढ़ जाएगी। याद से याद मिलती है, बाबा कहते हैं याद से याद मिलती है, और भगवान से हमें टचिंग मिलेगी, भगवान तो खुश रहेगा, भगवान भी खुश रहेगा कि आप मेरे अव्यभिचारी याद में हैं, तो भगवान भी खुश रहेगा और हम तेजी से इस जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो अव्यभिचारी याद से हमें जो फायदे होने वाले हैं, यदि उन फायदों को हम याद करेंगे तो भी हमारी अव्यभिचारी याद बढ़ती रहेगी। और लास्ट पॉइंट है कि अव्यभिचारी याद ना होने से या अव्यभिचारी याद को खंडित करने वाली बातें, बाबा कहते हैं आपको मेरी एक अव्यभिचारी याद में रहना है, लेकिन उस अव्यभिचारी याद को तोड़ने वाली ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी उस याद को तोड़ देती हैं, साइंस के साधन, क्योंकि साइंस के साधनों से व्यक्ति बहुत सुख ले रहा है, उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो बाबा ने कहा कि यदि आप साइंस के साधनों को यूज करते हैं तो अपने स्वपुरुषार्थ और सेवा के अलावा यदि आपने उसको यूज किया तो उससे क्या होगा कि आपके मन को वो भटका देंगी, आपके मन को उलझा देंगी। तो बाबा ने कहा कि साइंस के जो साधन है, चाहे मोबाइल है या कुछ भी है, उसको आपको अपने स्वपुरुषार्थ और सेवा के लिए यूज करना है, सुख के लिए नहीं, खुशी के लिए नहीं, सुख और खुशी तो आपको एक भगवान से लेनी है। तो यदि हम उसमें उलझे हुए हैं, उसमें अपने मन को हम बिजी किए हुए हैं, तो वो हमारे अव्यभिचारी याद को खंडित करेगी, तोड़ेगी। और कौन कौन सी बातें होंगी उसमें, हो गया वो, जो भी साधन है, चाहे टीवी है, मोबाइल है या अन्य कोई भी साधन है। दूसरी बात है पांच बंदर, 5 monkeys जो उछल कूद करते हैं, बाबा कहते हैं जो 5 बंदर हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा कि उन बंदरों को अभी क्या करो, अपने कंट्रोल में रखो, तो जो 5 monkeys हैं जो उछल कूद करते हैं वो हमारी अव्यभिचारी याद को खंडित करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल और थिंक नो इविल, क्योंकि अगर हम इनसे कोई भी कार्य करते हैं, आंखों से बुरा देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, कुछ भी करते हैं तो उससे हमारी याद टूटती है। तो इन पांचों बंधनों को अपने कंट्रोल में रखने हैं। तो उसके लिए बाबा की जो श्रीमत है, हियर नो इविल सी नो इविल, उसको फॉलो करना है। और कौन कौन सी बातें हैं? साइट सीन, साइट सीन से भी हमारी अव्यभिचारी याद खंडित होती है। कैसे खंडित होती है? उसमें तो खुशी मिलती है, अनावश्यक सूचना है। हाँ, नई नई सूचनाएं, जो नई नई सूचनाएं जो हमारे काम की नहीं है, जो नई नई सूचनाएं जो हमारे काम की नहीं, जो हमारे मतलब की नहीं है, यदि हम उसमें बिजी रहते हैं तो उससे भी हमारी अव्यभिचारी याद खंडित होती है। और बीते हुए काल की जो दर्दनाक घटनाएं वो भी हमारी अव्यभिचारी याद को तोड़ती हैं, क्योंकि जब जब वो बातें हमारी बुद्धि में आती हैं तो उसमें हमारा मन उन बातों में उलझ जाता है। वो बातें हमारी बुद्धि को हलचल में लाती हैं, मन को डिस्टर्ब करती हैं, बाद में फिर कई नेगेटिव भावनाएं पैदा होती हैं, कभी ईर्ष्या होगी, कभी बदले की भावना पैदा होगी। तो जिसके अंदर बदले की भावना होगी उसका भगवान के साथ लिंक नहीं जुटेगा, अर्थात अव्यभिचारी याद नहीं रहेगी। तो ये पास्ट की जो घटनाएं घटी हैं जिन्होंने मन को दुखी किया था, उन बातों को हमें भूलना पड़ेगा। और फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी एक बहुत बड़ा घातक रोग है। बाबा ने कहा कि जहां फैमिलियरिटी है वहां बाप की याद नहीं रहेगी, क्योंकि वह आत्मा हमेशा आकर्षित करती रहेगी। तो फैमिलियरिटी जो है वो भी हमारी अव्यभिचारी याद को खंडित करती है। तो इससे हमें परहेज करना है। कैसे परहेज करेंगे? हाँ जी, काम से काम, मतलब से मतलब रखना है, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से प्यार रखना है, उसके साथ दिल का लगाव ना हो, ऊपर ऊपर से प्यार करना है, दिल का प्यार एक भगवान से हो, सब बातों को बिंदु लगा करके एक बिंदु को याद करना है। और भी कोई बातें होंगे जो हमारे अव्यभिचार याद को खंडित करती हैं? हाँ जी, परचिंतन, परदर्शन, परमत। बाबा ने कहा ये तीन पर जो हैं बहुत, ये बहुत घातक हैं। इस तीनों परों को काटना है, एक पर रखना है। कौन सा पर? परोपकारी। तो परोपकारी बनेंगे तो जीवन में उन्नति होगी और बाबा की याद सहज रहेगी। यदि उन तीन पर में हैं, परचिंतन में, परदर्शन में, परमत या मनमत को हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी अव्यभिचारी याद खंडित होती रहेगी। तो ये कुछ बातें थी। यदि इन बातों को हम जीवन में अप्लाई करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आप मेरी एक अव्यभिचारी याद में रहो, तो उस अव्यभिचारी याद को हम अपने जीवन में कायम रख सकते हैं। ओम शांति।
Hey.